दोस्तों, जैसे कि आप सबने अनुमति दी है और मेरे प्रस्ताव को स्वीकार किया है, आज बुधवार है और आज से हम उस नए की शुरुआत कर रहे हैं। और नए की शुरुआत मैं इस बात से कर रहा हूं कि जो आईएएस की परीक्षा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल इसकी फिलॉसफी क्या है, इसका दर्शन शास्त्र क्या है, या यूं कह लीजिए कि इसके नींव में कौन से तत्व काम कर रहे होते हैं। हम लोग जब एग्जाम देते थे, मैं ये 1980 के आसपास की बात बता रहा हूं, उस समय भी संख्या कम नहीं थी। हर साल लगभग लगभग 5 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते थे और बैठने वालों की संख्या उस समय भी 50% थी और आज भी 50% है। ये जरूर है कि ये जो 5 लाख फॉर्म भरने वालों की संख्या है, ये बढ़कर लगभग लगभग 11-12 लाख तक पहुंच गई है। और इसके पीछे कारण है, कारण देखिए, मीडिया का इतना प्रभुत्व आ गया है, अखबार दुनिया भर की चीजें लिखने लगे हैं, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से आईएएस और जो उसमें सफल हो जाते हैं उनके इंटरव्यूज वगैरह आते हैं, तो लोग उत्साहित होते हैं और एक अच्छी बात है। अगर किसी की बात सुनकर, कुछ पढ़कर आप में ऊर्जा पैदा हो रही है और कुछ बड़ा करने की इच्छा जन्म ले रही है, तो एक बहुत अच्छी बात है। हम सबको ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन करने के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी यह भी होता है कि हम उसके जो मूल तत्व हैं, जिसे मैं यहां फिलॉसफी कह रहा हूं, हम उसे जानें, उसे समझें और आत्मसात करके अप्लाई भी करें। क्योंकि अगर हम उसकी फिलॉसफी को समझे बिना ही उसमें कूद पड़ते हैं, आप इसे यूं कह लीजिए कि मैं तैरना तो नहीं जानता लेकिन मैं गहरी नदी में कूद पड़ता हूं, तो आप सोचिए कि क्या होगा। अंततः समय मेरा खराब होगा, नुकसान मैं अपना करूंगा, बावजूद इसके कि मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, अगर आप उसकी फिलॉसफी को जान लेते हैं तो अब आप जो तैयारी करेंगे, यानी कि जो आपने डेस्टिनेशन चुना है अपने लिए, जो मंजिल निर्धारित की है, उद्देश्य फिक्स किया है, अगर आप फिलॉसफी को जान लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तो उस तैयारी को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और साथ ही साथ फिलॉसफी को जान लेने के बाद हमारे अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा हो जाती है, हम एक दृष्टि विकसित कर लेते हैं कि अच्छा, अगर यह ऐसा है तो इसे ऐसा किया जाना चाहिए, यह मेरे काम की है, यह मेरे काम की नहीं है। क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे कि दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके पीछे फिलॉसफी काम न कर रही हो? दरअसल मुश्किल हमारे यहां यह है कि जब हम फिलॉसफी की बात करते हैं तो उसे सब्जेक्ट से जोड़ दिया जाता है कि आप अरस्तु को पढ़ रहे हैं तो आप कौटिल्य को पढ़ रहे हैं, तो ये फिलॉसफर हैं तो उनकी बातों को पढ़ना फिलॉसफी है। नहीं, किसी भी तथ्य, घटना, वस्तु, कार्य के सिद्धांत को जान लेना कि ये काम कैसे कर रहा है, ये क्यों ऐसा है, वही फिलॉसफी कहलाती है। और यहां मैं आज आपसे आईएएस की फिलॉसफी के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं? देखिए, मेरे कहने से नहीं, अंदर से स्वीकार करते हैं। क्या आप मेरी इस बात को स्वीकार करते हैं और पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि जो आईएएस की परीक्षा है यह दुनिया के कठिनतम परीक्षाओं में से एक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कठिनतम परीक्षा है, नॉट, बहुत सी कठिन परीक्षाएं हैं, उनमें से यह एक परीक्षा है, राइट? और यह तो आप जानते ही हैं कि भारत की तो कठिनतम परीक्षा है ही, और इसके जरिए जो सरकारी नौकरियां होती हैं आप उसके टॉप पर पहुंचते हैं। नौकरी चाहे आपको जो भी मिले, आप जानते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफल होने के बाद बहुत सारी नौकरियां हैं जिनमें से आप कुछ का आप चयन करते हैं और फिर आपको नौकरियां दी जाती हैं। कभी आपको अपने पसंद की नौकरी मिल जाती है, नहीं तो और दूसरी मिल जाती है, लेकिन जो भी मिले, यह बात पक्का है कि यदि आप इस नौकरी में भर्ती पाते हैं तो आप जहां भी जाएंगे आप टॉप पर रहेंगे, कोई आपको सुपरसीड नहीं कर सकेगा, आपके ऊपर कोई नहीं बैठ सकेगा। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। तो आप देखें कि यहां इन दोनों का मैच आप देख रहे हैं, कठिनतम परीक्षा है तो सर्वोच्च नौकरी भी है, और सीधी सी बात है कि सर्वोच्च नौकरी के लिए कठिनतम चीज होनी ही चाहिए। तो ऐसा क्यों? आपको जानना ही चाहिए। आप अपनी दुनिया के चारों तरफ देखिए, आसपास देखिए, दुनिया के चारों ओर देखिए, घटनाओं को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे काम करती हैं, ये क्या होता है। अब मैंने कहा कि ये जो आईएएस की परीक्षा है इसकी कीमत क्या है, कीमत मतलब इसके बदले में आपको मिलता क्या है, इसके बदले में आपको सरकार की सर्वोच्च नौकरियां मिलती हैं, राइट? तो अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया है यार, इसको जरा सा सरल बना देते तो हम भी पास हो जाते, वो भी पास हो जाता। तो क्या अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर सरल हो जाता तब तो मैं इसे क्वालिफाई कर जाता, तो क्या मैं सही सोच रहा हूं? मैं सही नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि मैं इसके फिलॉसफी को नहीं जान रहा हूं। क्योंकि अगर वो सरल होता तो मेरे लिए थोड़ी सरल होता, सबके लिए सरल हो जाता, दूसरों के लिए भी सरल हो जाता। तो अभी जो दूसरे लोग मुझसे बेहतर हैं, जो सफल हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं हो रहा हूं, अगर ये परीक्षा सरल हो जाती तब भी वो ही लोग सफल होते, मैं नहीं हो पाता, क्योंकि वो मुझसे बेहतर ही हैं। तो अब जरूरी क्या होता है? जरूरी ये होता है कि मैं अभी जो भी हूं, जैसा भी हूं, मुझे अपने आप को उन लोगों के समकक्ष पहुंचाना है जो बेहतर है, जो बेहतर है। अब ऐसा होगा कैसे? तो जब हम फिलोसफिकल तरीके से बात करते हैं तो आप देखिए कि इस धरती पर जो चीजें हैं उनकी अपनी एक कीमत है, यानी कि हर चीज की आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जो मैं कीमत की बात कर रहा हूं, आप ये मत समझिए कि मैं उसके प्राइस पैसे के हिसाब से बात कर रहा हूं। कीमत का मतलब है कि उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है, और जो देना पड़ता है, आप देखिए कि प्रकृति ने कितनी खूबसूरत तरीके से हमारे लिए व्यवस्थाएं की हुई हैं। हमारे जीने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं उनके लिए हमें कुछ नहीं देना पड़ता। क्या आप हवा के लिए कुछ देते हैं? क्या सूरज आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल भेजता है? क्या वर्षा का जो देवता है वो आपके पास किसी तरह की कोई वसूली करता है? ये सब हमारे जीवन की जरूरत की चीजें हैं, हमें मुफ्त में मिली हुई हैं। और चूंकि एबंडेंट है, यानी कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, इसीलिए इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये चीजें हमें मिली हुई हैं, और अगर ये चीजें मिलनी बंद हो जाए तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, राइट? इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रचुरता से उपलब्ध हैं उनके लिए हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। तो जो आईएस है प्रचुरता से तो उपलब्ध नहीं है, क्या आसानी से उपलब्ध है? इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, उसमें आप ग्रेजुएशन कितने होंगे इनके संख्या लगा लीजिए कि ग्रेजुएट की संख्या कितनी होगी। 12 लाख लड़के तो फार्म भरते ही भरते हैं, स्टूडेंट फार्म भरते ही भरते हैं, माफ कीजिएगा मैं जब लड़के कह देता हूं तो उसमें से लड़कियां गायब हो जाती हैं, स्टूडेंट्स फार्म भरते ही हैं, और लगभग लगभग आधे बैठ भी जाते हैं। तो चलिए 5-6 लाख स्टूडेंट बैठ गए, और उसमें से अंततः 1000 सेलेक्ट होंगे। तो जो उपलब्ध है, जो पद हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, 1000 है, और ये जो पद हैं ये सर्वोच्च हैं, सबसे अधिक महत्व के पद हैं, अधिकार की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से, कुछ कर पाने के आत्मसंतोष की दृष्टि से, कई दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतने महत्वपूर्ण पद को एकदम आसान बना दिया जाना चाहिए? सोच करके देखिए, अगर आसान बना दिया जाएगा तो क्या होगा? चलिए अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह रूप में देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इसे बहुत आसान बना दिया गया तो क्या होगा? आपको नहीं लगता कि इसकी जो अभी गरिमा है वो गरिमा कम हो जाएगी? खत्म हो जाएगी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगी। देखिए, नौकरी तो नौकरी है, सरकारी नौकरियां बहुत सी हैं, लेकिन दूसरों की प्रतिष्ठा इसके बराबर क्यों नहीं है? दूसरों की भी प्रतिष्ठा है, वो अपने स्तर की प्रतिष्ठाएं हैं, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन इसके स्तर की नहीं है। तो अगर इसे सरल बना दिया जाए, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं, हाँ मन ही मन होता है कि यार ये सरल होता तो कितना मजा आता ना। तो अगर सरल होता तो आपको मजा तो जरूर आता, लेकिन ये जो पद हैं वो अपनी गरिमा खो चुके होते। इनकी गरिमा ही इसलिए है क्योंकि ये कठिन है। इसका मतलब है कि यदि किसी भी वस्तु को पाने के रास्ते को आसान कर दिया जाए तो उस वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। मैं एक अक्सर उदाहरण दिया करता हूं, इस उदाहरण को देखिए, कोयला, कोल है ना, कोयला निकलता है खदानों से, कोयला निकलता है, और खदानों से हीरे भी निकलते हैं, हीरे भी निकलते हैं, उपयोगिता की दृष्टि से आप देखिए कि कोयले की ज्यादा उपयोगिता है या हीरे की ज्यादा उपयोगिता, व्यावहारिकता की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको लगेगा कि उस हिसाब से तो कोयले की ज्यादा उपयोगिता, हमें एनर्जी मिल रही है। अब जो डायमंड है, डायमंड बेसिकली है क्या, आप अंगूठी में पहन लेते हैं, गले के चैन में लगा लेते हैं, आभूषणों के ज्यादा काम आता है, थोड़ा बहुत दूसरे यूज में आता है, लेकिन ज्यादातर आभूषणों के यूज में आता है डायमंड। तो ठीक है, बिना आभूषण के तो हम रह भी सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन कोयला तो जरूरी है, एनर्जी जो चाहिए हमें। तो अगर आप उपयोगिता की दृष्टि से देखें थोड़ा सा तटस्थ होकर के, तो पता लगेगा कि कोयला ज्यादा उपयोगी है डायमंड की तुलना में, लेकिन कोयले की कीमत क्या है और डायमंड की कीमत क्या है, क्यों? क्योंकि कोयला बहुत आसानी से मिल सकता है, हम कोयले को बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, डायमंड को हम आसानी से हासिल नहीं कर सकते, और चूंकि उसे आसानी से हासिल नहीं कर सकते इसलिए उसकी इतनी ज्यादा कीमत है। और अगर इसे वाइस वर्षा कर दें कि डायमंड कोयले की तरह मिलने लगे और कोयला डायमंड की तरह मिलने लगे, यानी कि कोयला मिलना बहुत मुश्किल हो जाए, तो आप अनुमान लगाइए कि स्थितियां क्या होंगी। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि किसी भी वस्तु की जो गरिमा है, उसका जो मूल्य है, वो उसका निर्धारण इस बात से होता है कि उसे पाना कितना कठिन है। इसलिए मान करके चलिए कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को अगर आप गरिमा पूर्ण मानते हैं, अगर इसे बड़ा मानते हैं, तो ये मानना ही पड़ेगा कि यह कठिन है। चूंकि यह कठिन है इसलिए यह गरिमा पूर्ण है, इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण भी है, और इसीलिए जब आपको यह मिल जाती है तो आपको इतना अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है। अपने दिमाग को करेक्ट कीजिए ताकि आप ये जो आप कह लीजिए कि आप एक योद्धा हैं और आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की योद्धा से लड़ना है ना, ये फाइटिंग है, तो आपको पता लगना रहना चाहिए कि जो रिंग में जो दूसरा है जिससे आपको फाइट करना है, मुक्केबाजी करनी है, वो कैसा है, वो कितना शक्तिशाली है, तभी तो आप अपने दांव पेच तैयार कर सकेंगे। तो एक तथ्य फिलोसफिकल तौर पर आपको अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहिए कि भैया अगर मैंने इस परीक्षा को देने का फैसला किया है तो मैंने बहुत ही कठिन रास्ता अपने लिए चुना है, और ये जो रास्ता है उबड़ खाबड़ है, पत्थरों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, सारी तरह की जो तकलीफें हो सकती हैं किसी भी यात्रा में वो इसमें हैं, और मुझे इन्हें पार करना है। इसीलिए जब ये रास्ते, जब आप शुरुआत होगी और ये रास्ते में आपके सारी चीजें आएंगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप मान करके चल रहे हैं कि ये तो होना ही था। दोस्तों मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरी यह बात आपके दिमाग को थोड़ी सी शक्ति देने में कुछ सहयोग कर सके। तो आज बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, राहुल रजक नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, ललिता गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश से, और अंजलि सोनी सीधी मध्य प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।